हिस्कियल 43वां बाब। फिर वो मुझे फाटक पर ले आया, यानी उस फाटक पर जिसका रुख मशरिक की तरफ है, और क्या देखता हूं कि इसराइल के खुदा का जलाल मशरिक की तरफ से आया, और उसकी आवाज सैलाब के शोर की सी थी, और जमीन उसके जलाल से मुनव्वर हो गई, और ये उस रोया की नुमाइश के मुताबिक था जो मैंने देखी थी। हां, उस रोया के मुताबिक जो मैंने उस वक्त देखी थी जब मैं शहर को बर्बाद करने आया था, और ये रोयतें उस रोया की मानिंद थीं जो मैंने नहर कबार के किनारा पर देखी थी। तब मैं मुंह के बल गिरा, और खुदावंद का जलाल उस फाटक की राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ है हैकल में दाखिल हुआ, और रू ने मुझे उठाकर अंदरूनी सहन में पहुंचा दिया, और क्या देखता हूं कि हैकल खुदावंद के जलाल से मामूर है। और मैंने किसी की आवाज सुनी जो हैकल में से मेरे साथ बातें करता था, और एक शख्स मेरे पास खड़ा था, और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, ये मेरी तख्तगाह और मेरे पांव की कुर्सी है, जहां मैं बनी इसराइल के दरमियान अब तक रहूंगा, और बनी इसराइल और उनके बादशाह फिर कभी मेरे मुकद्दस नाम को अपनी बदकारी और अपने बादशाहों की लाशों से उनके मरने पर नापाक न करेंगे, क्योंकि वो अपने आस्ताने मेरे आस्तानों के पास और अपनी चौखटें मेरी चौखटों के पास लगाते थे, और मेरे और उनके दरमियान सिर्फ एक दीवार थी। उन्होंने अपने उन घिनौने कामों से जो उन्होंने किए मेरे मुकद्दस नाम को नापाक किया, इसलिए मैंने अपने कहर में उनको हलाक किया। बस अब वो अपनी बदकारी और अपने बादशाहों की लाशें मुझसे दूर कर दें, तो मैं अब तक उनके दरमियान रहूंगा। ए आदमजाद, तू बनी इसराइल को ये घर दिखा ताकि वो अपनी बदकिरदारी से शर्मिंदा हो जाएं और इस नमूना को नापें, और अगर वो अपने सब कामों से पशेमान हो तो उस घर का नक्शा और उसकी तरतीब और उसके मुखारे जो मुदखल और उसकी तमाम शक्ल और उसके कुल अहकाम और उसकी पूरी वजह और तमाम कवानीन उनको दिखा, और उनकी आंखों के सामने उसको लिख, ताकि वो उसका कुल नक्शा और उसके तमाम अहकाम को मानकर उन पर अमल करें। इस घर का कानून ये है कि इसकी तमाम सरहदें पहाड़ की चोटी पर और इसके गिर्दा गिर्द नहायत मुकद्दस होंगी। देख, यही इस घर का कानून है। और हाथ के नाप से मजबा के ये नाप हैं, और इस हाथ की लंबाई एक हाथ चार उंगल है, पाया एक हाथ का होगा और चौड़ाई एक हाथ, और उसके गिर्दा गिर्द बालेशत भर चौड़ा हाशिया और मजबा का पाया यही है, और जमीन पर के इस पाया से लेकर नीचे की कुर्सी तक दो हाथ, और उसकी चौड़ाई एक हाथ, और छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी तक चार हाथ, और चौड़ाई एक हाथ, और ऊपर का मजबा चार हाथ होगा, और मजबा के ऊपर चार सींग होंगे, और मजबा बारह हाथ लंबा होगा, और बारह हाथ चौड़ा मजबा, और कुर्सी चौदह हाथ लंबी और चौदह हाथ चौड़ी मुरब्बा, और गिर्दा गिर्द उसका किनारा आधा हाथ, और उसका पाया गिर्दा गिर्द एक हाथ, और उसका जीना मशरिक रो होगा। और उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मजबा के ये अहकाम उस रोज जारी होंगे जब वो उसे बनाएंगे, ताकि उस पर सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाएं और उस पर लहू छिड़कें, और तू लावी काहिनों को जो सदूक की नस्ल से हैं, जो मेरी खिदमत के लिए मेरे हजूर आते हैं, कता की कुर्बानी के लिए बछड़ा देना, खुदावंद खुदा फरमाता है, और तू उसके खून में से लेना और मजबा के चारों सींगों पर, उसकी कुर्सी के चारों कोनों पर और उसके चौगिर्द के हाशिया पर लगाना। इसी तरह कफारा देकर उसे पाक को साफ करना और खता की कुर्बानी के लिए बछड़ा लेना, और वो घर की मुकर्रा जगह में मकदस के बाहर जलाया जाएगा। और तू दूसरे दिन एक बेऐब बकरा खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाना, और वो मजबा को कफारा देकर उसी तरह पाक करेंगे जिस तरह बछड़े से पाक किया था। और जब तू उसे पाक कर चुके तो एक बेऐब बछड़ा और गल्ला का एक बेऐब मेंढा चढ़ाना, और तू उनको खुदावंद के हजूर लाना, और काहिन उन पर नमक छिड़कें और उनको सोख्तनी कुर्बानी के लिए खुदावंद के हजूर चढ़ाएं। और तू 7 दिन तक हर रोज एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए तैयार कर रखना, वो एक बछड़ा और गल्ला का एक मेंढा भी जो बेऐब हो तैयार कर रखें। 7 दिन तक वो मजबा को कफारा देकर पाक को साफ करें और उसको मखसूस करेंगे। और जब ये दिन पूरे होंगे तो यूं होगा कि 8वें दिन और आइंदा काहिन तुम्हारी सोख्तनी कुर्बानियों को और तुम्हारी सलामती की कुर्बानियों को मजबा पर गुजरानेंगे, और मैं तुमको कबूल करूंगा, खुदावंद खुदा फरमाता है।